छुपाना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मुहब्बत है, बताना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मुहब्बत है, बताना भी नहीं आता। छुपाना
हथेली पे तुम
क्यों छुपाते हैं। जुबां पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं।
धुनों से सजे कुछ अलबेले और सदाबहार गीतों के अंश।
जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं
जिसके सी
सपने हमने जो देखे सपने, सच हो गए वो अपने,
ओ मेरे साजना दिन आ गए हैं प्यार के, मेरे साजना दिन आ गए करार के, हमने जो देखे सपने सच हो ओ मेरे साजना, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी
आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मित्रवा मेरे मित्रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मित्रवा।
दोस्तों नमस्कार, कल्याण जी आनंद जी इस सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी के आज आनंद जी भाई हमारे बीच स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जाहिर है कि अब से जो एक घंटे का समय है वो बहुत ही मधुर समय होगा। मैं आप सब की तरफ से आनंद जी भाई का यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आनंद जी भाई नमस्कार।
नमस्कार जी।
आनंद जी भाई, संगीतकार जोड़ियाँ भारतीय फिल्म संगीत इतिहास में कोई नई बात नहीं है, बहुत सी मशहूर जोड़ियां रही हैं और हैं भी, लेकिन इन जोड़ियों में ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि उनमें से कोई एक कलाकार नॉर्थ से है, दूसरा कलाकार बंगाल से है,
दूसरे प्रोविंस से बात।
जी हाँ, और वो दोनों मिलते हैं, बाद में तय करते हैं कि हम लोग साथ फिल्म में संगीत देंगे। आपके साथ कुछ अलग बात है, जैसे कि आपके बड़े भाई हैं कल्याण जी भाई, तो बचपन से ही आपका साथ रहा, कोई तो ऐसा एक समय होगा जब आपको भी लगा होगा कि अब मुझे बड़े भाई के साथ में मिलके संगीत का एक लंबा सफर तय करना है, वो कौन सा पल था?
ये तो ऐसा है कि आज यहाँ जहाँ बैठे हैं तो मुझे पूरे फ्लैशबैक में मैं चला गया हूँ। जब हम छोटे थे तो स्कूल डेज में हम यहाँ आया करते थे, गुजराती प्रोग्राम हुआ करते थे बहुरूपी ऑल इंडिया रेडियो से, बड़े दस सज के हम लोग यहाँ आते थे और एक इंस्पिरेशन यहाँ से मिलता था कि अपनी आवाज़ हर जगह पहुँचेगी, ये करेगी, उन दोनों में हर किसी के घर में रेडियो भी नहीं हुआ करते थे, और ट्रेजेडी ये होती थी कि जो हम बोले हैं वो सुनने के लिए टेप रिकॉर्ड भी नहीं थे उन दिनों में, तो लोगों से पूछते थे कि क्या सुनाई दिया आप, कैसी आवाज़ आती थी, क्या था ये था। और जिस माहौल में हम जहाँ रहते थे गिरगांव, इन दोनों में ये आज़ादी की पहले की बात कर रहा हूँ मैं, टॉकिंग अबाउट द 42-43 इससे पहले की, तो ये होता था कि भाई वहाँ वी शांताराम जी, शांता आपटे टे, इस तरह के लोग सब वहाँ रहते थे, तो उन माहौल में से गाना बजाना भी गिरगांव में बहुत होता था। आपको ये भी पता नहीं होगा शंकर जी किसमें से, शंकर जी भी वहाँ रहते थे,
मुंबई की एक जगह है यहाँ पर,
मुंबई की
गिरगांव नाम,
गिरगांव। और गिरगांव में ये सारा कुछ होता था तो हम भी वहीं रहते थे, उससे हमको ये माहौल को थोड़ा सा हमको ये इनक्रेजमेंट मिली वहाँ पे। कल्याण जी तो बोर्डिंग में पढ़ते थे, कंजर्वेटिव फैमिली की होने से वजह से हमको ज़्यादा छूट नहीं मिलती थी, तो कल्याण जी बोर्डिंग में थे तो उनको वहाँ छूट ये थी कि भाई बोर्डिंग में रहें तो पढ़ने के साथ उनको बैंड है, ये एक्सरसाइज ये सब कुछ था, और बचपन जो आदमी का होता है उसमें मज़ा किया तो होता है, थोड़ा शैतानियत भी होती है, तो वहाँ ये था कि बैंड में अगर आप काम करते हैं, बैंड बजाते हैं, तो सर्टन पीरियड आपको नहीं भरने पड़ेंगे, तो हर बच्चा चाहता था कि उसमें चला जाए, उसमें दूध भी फ्री मिलता था, छुट्टियाँ भी ज़्यादा मिलती थी, तो इसलिए इन्होंने वो शौकिया उसमें ये कर लिया था, उसमें से फिर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट थी, तो उन्होंने और भी एक इंस्ट्रूमेंट की खोज की और धीरे धीरे इन्होंने किया, मैं भी घर पर रह के अपना करता था। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बना के स्टार्ट किया, तो काम तो साथ में करते रहते थे हम। और ये जो आपने कहा कि दो भाई साथ में जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो इससे पहले हुसनलाल जी, भगत राम, ये भी दो साथ में आ गए, अब तो दो दो जोड़ी और भी हो गई हैं, आनंद मिलन भी हैं और भी अपने ये
जतिन
लंडे भी हैं, तो अभी हो गया है। मुझे लगता दो आदमियों के काम करने में एक फ़ायदा तो ये है कि दो ब्रेन साथ में काम करते हैं, तो उससे और भी फ़ायदा ये होता है कि भाई एक अपने स्टाइल करेगा, दूसरा दूसरे स्टाइल का करेगा। जैसे हम लोगों में रुचि में कल्याण जी भाई का क्लासिकल म्यूज़िक पे काफ़ी लगा हुआ है उनको, तो वो उस तरफ जाते हैं। मैं छोटा हूँ उनसे 5 साल, तो थोड़े मेरे आइडियाज़ थोड़े उनसे अलग रहेंगे, थोड़ा वेस्टर्न म्यूज़िक, चुलबुला म्यूज़िक है, इस तरफ मेरा ध्यान होता है। फिर ये सब साथ में मिल के एक जो मेल होता है, चुलबुले गाने मैंने बनाए, कभी मैंने सैड सॉन्ग कर लिए, कभी वो म्यूजिक देख के वो भी चुलबुला के गाने बनाने के चक्कर में रहते हैं। पिताजी ने जब हम दोनों जुड़ गए तो उन्होंने पूछा कि भैया आप दोनों तुम जुड़ गए हो, आज तुम दोनों के नाम आएंगे तो ईगो की बात तो आएगी, सपोज एक गाना तुमने किया लोग उसको तारीफ़ करते होंगे, वो बड़ा है तुमसे तो उसको ज़्यादा लोग मानेंगे। मैं बोले सर बड़े हैं सबसे पहले तो वही होगा, तो बोले कैसे समझाओगे इस बात को, तो बोले पिताजी आपसे जो सीखा उसमें ये है कि ये सूरज बनेंगे मैं चाँद बनूँगा। बोले फिर तो कभी करनी, लेकिन बोले घर वालों के जब बच्चे तुम्हारे बड़े हो जाएंगे कभी कभी ये बात पे जिक्र होगा, ईगो की बात भी आएगी, जब नाम एक साइड में रह जाएगा लेकिन ईगो की बात आएगी, तो मैं बोला इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी, इतना आपको विश्वास होना चाहिए और रहेगा। तो बोले नहीं मुझे वो मालूम है कि तुम संभाल लो ईगो की बात को। तो कई बार ये होता है कि काम उन्होंने किया हुआ है क्रेडिट मुझे मिलती है, मैंने किया हुआ उनको क्रेडिट मिलती है, लेकिन नाम तो जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ हम ये भी सोचते हैं कि जब बुरा भी कोई काम होता है दोनों को डिस्क्रेडिट साथ में जाती है।
आनंद जी भाई आपके जवाब से मुझे एक सवाल मिल रहा है, वो ये कि देखिए जब दो लोगों की मेहनत एक गीत के पीछे लगती है, तो आपके करियर में भी कभी तो एक कोई ऐसा गीत होगा, कभी कोई एक ऐसा कि जिसपे उन्होंने कहा होगा कि ये अगर ऐसा हो तो अच्छा है, और आपने कहा कि नहीं ये ऐसा हो तो अच्छा है।
दो आदमी साथ में चलेंगे तो उसमें थोड़ा सा फर्क तो होगा, लेकिन इसी की खूबी ये है कि दोनों मिलके फिर जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब एक गाने सिचुएशन बनती है, एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हमको गाना समझाते हैं, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि दोनों अपने दिमाग से जो सोचता है वो करते हैं काम, उसके बाद डायरेक्टर को सुनाते हैं। डायरेक्टर से उस गाने को सुन लिया दोनों के, मैं बोलूँगा केरवा में बनाऊँ, उन्होंने बोला 6/8 में मैंने गाना बनाया, कभी ये होता है कभी मैंने उल्टा बनाया कभी उन्होंने सीधा बनाया, उसके बाद डायरेक्टर के जो सिचुएशन पे गाना ठीक लग रहा है वो गाना वो रखते हैं। अभी उसमें भी ये नहीं है कि मैंने भी दो गाने बनाए होते हैं, उन्होंने भी दो गाने बनाए होते हैं, उस वक्त तो क्रिएट करना पड़ता था, नए गाने बनाने पड़ते थे, बैठ के बाजे के साथ बनाना पड़ता था, रेडी मसाला नहीं मिलता था, तो उसमें जो गाना उन्होंने पसंद किया डायरेक्टर ने वो समझो मेरा है, तो मेरा वीटो पावर हो गया, फिर कल्याण जी भाई मुझे सजेशन देंगे, और जब कल्याण जी भाई का सजेशन हो गया ओके, तो फिर मैं बोलूँगा कल्याण जी भाई यहाँ मुझे लगता है रिदम ऐसे कर लें, तो इस तरह से काम होता था, तो कहीं वो दिक्कत नहीं आती। जिस तरह से हम लोग इस शौक से इस लाइन में आए ना, एक तो होता है रोज़ी रोटी के लिए आदमी काम करता है, एक तो अपने दिल को खुश करने के लिए, तो जब दिल खुश करने की बात आती है तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बड़ा सुख से चैन से काम कर रहे हैं, बड़े दिल से कर रहे हैं, उस लगाव से कर रहे हैं कि आपको उसके पीछे मॉनिटरी गेन है कि नहीं उसकी फिक्र नहीं होती। इसलिए आपने कभी देखा होगा हम लोगों में कभी कंट्रोवर्सी नहीं आती कि इसका ये हमको दूसरों को भी काम अच्छा लगता है।
आनंद जी भाई, अब इतनी बातों के बाद एक गीत कोई आप अपने पसंद का सुनवा दीजिए।
देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा कि सुनने वाले कहाँ कहाँ से हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, इस जरिए से हम ये, मैं यही मैसेज दे सकता हूँ कि बड़ी दूर से आए हैं आपके घर में, प्यार का तोहफा लाए हैं।
बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
बहुत अच्छे बच्चे। नहीं जाते बिनाते तो फलाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फलाए हैं।
आनंद जी भाई, ये खूबसूरत गीत हमने सुना। एक बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इतना अच्छा गीत कैसे बन जाता है?
सिंपल सा सवाल नहीं है, ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल भी है। देखिए, जो भी गाने दिल से बनते हैं ना, जो अनुभूति आप करते हैं और उससे जब जो कुछ काम होता है ना, वो अलग ही होता है। एक तो प्रोज आप किताब लेके बैठेंगे और उसको ड्रामा स्टाइज करेंगे आप, और एक घर पर कोई मेहमान आया और अपना दोस्त सीख रहा है और अब जिस प्यार से उसको कहेंगे आओ भाई आओ कितने दिनों के बाद आए हो, तो उसमें एक वो कोई रेडीमेड नहीं है, वो दिल की बात निकलती है। तो जब जब ये गाने इस तरह के महसूस करके फील करके बने गाने, उसका अंदाज ही और होता है कुछ।
जब आपके सामने लिरिक्स आते हैं, शब्द आते हैं गीतों, सबसे पहले आपके सामने लिरिक्स आते हैं, गीत के शब्दों को देखने के बाद पहला जो आपके जहन में जो नोट स्ट्राइक होता होगा कि ये इसकी धुन ऐसी होनी चाहिए, उस फीलिंग के बारे में कुछ बताइए।
देखिए, कंपोजिशन का काम ये है कि स्पेशली जो कुछ जब आप काम करने लगते हैं तो फिर आदमी को सब सीखना चाहिए, लोगों से सुनना चाहिए। तो किसी से एक बात कही गई थी जो परदेश में हुई थी, बहुत अच्छी मुझे लगी, कि कभी भी कंपोज करना है तो किसी चीज़ का सहारा मत लो पहले, ना बाजे का लो, ना लय का लो, ना किसी का लो, पहले उन शब्दों को लेके आपके दिल में क्या आइडिया आता है, क्या फीलिंग आती है, पहले उसको पकड़ो। उसके बाद धीरे 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 जब सेटल हो जाते हैं आप उसमें, तो उसके बाद बाजे में देखो उसमें कौन से सुर में अच्छा लगेगा, कौन से सिंगर के हिसाब से, फिर उसको लय में बांधो। तो इस तरह से होता है, एक गाना जो बनेगा वो उसका पहला भाव जो है बहुत अच्छा निकलेगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि प्यारी बहनिया जो गाना बना था, हम लोग ने हर वक्त ये देखा कि फोक का घूमते रहे शो में, तो हर वक्त देखा कि इंस्ट्रूमेंट लोगों को कौन से पसंद आते हैं, जो अवेलेबिलिटी है इंस्ट्रूमेंट की है, जनरल फीलिंग लोगों की क्या है। जैसे गोविंदा एक वक्त के लिए गाना है, प्यारी बहनी अलग वक्त के लिए, भूल चली अलग वक्त के लिए, ओम जय जगदीश्वर हरे पूजा के वक्त के लिए, तो ऐसे गाने जब भी हमको मौका मिलता था उसको हम डालने की कोशिश करते हैं। तो सुल्तान भाई ने दाता में हमें कहा कि भाई एक गाना चाहिए जहाँ बहन के लिए, जैसे वो बनाया था प्यारी बहनिया, वैसा ही गाना चाहिए और एक धमाके वाला गाना चाहिए। अब उस वक्त अनुभूति ये हुई कि मेरी लड़की थी वो लंदन में थी, उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि डैडी कैसे भी करके आ जाओ, उसकी फर्स्ट डिलीवरी थी पहले। तो बोली, मैं बोला बेटा मैं अभी तो नहीं आ सकता हूँ। तो उसने एक बात कही जो मुझे बहुत अपील भी की और मैं बड़ा डिस्टर्ब भी हो गया उससे। उसने यही बात की कि बेटी को एक बार डैडी को भेज दिया घर से, उसके बाद कोई उसका अधिकार नहीं रहता, सिर्फ बच्चों का ही रहता है। अब बात तो खलने लगी मुझे उसकी। तो जैसे ये गानों पे सिचुएशन में बैठे तो बोले कि अक्सर ये होता है कि शादी के गाने जो होते हैं उसमें हम बोलते हैं कि प्यारी बहनिया तू जा, तू जाने की बात करते हैं और नसीहत देते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो मैंने सुल्तान भाई को भी ये कहा, अर्जुन जी अनजान जी भी बैठे थे, कि भैया इसमें मुझे ये चाहिए कि लड़की भी कुछ कहना चाहती है कि वाई मी ओनली, मुझे इस घर से क्यों निकाला जाता है और क्यों नहीं, जो भाई हैं वो क्यों रहते हैं। तो एक वो समझ में जो गाना बना, ये गाना था वो बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। तो इस गाने में उस पर सारे कोरस वाले रो रहे थे, कोई ड्रामा नहीं था, अलका रो रही थी, मुख्य अपने किशोरदा भी इतने ये हो गए थे, और सबसे जल्दी गाना इसलिए रिकॉर्ड हो गया कि हम वो मूड जो बना था गाने का उसके लिए हमने और टेक्निकल बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो जब भी ये गाना आता मैं रोते रहता हूँ, अभी भी गाना आता तो मैं रोता हूँ। लेकिन खास बात यह है कि अलका की शादी में उसने खास इंस्ट्रक्शन दी थी अपने भाई को, बोले ये गाना नहीं बजाना तुम, बोले मुझे वो सुन के मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी, और बोले वो मजा कर करो, और मतलब इतना इम्पैक्ट उस गाने का उसको भी था कि उसने उस दिन वो गाना बजाने नहीं दिया।
बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है,
बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है,
बन के दुल्हन एक दिन तुझे दिया घर जाना है,
के शुरुआती दौर की ओर जा रहे हैं,
यानी ब्लैक एंड व्हाइट का
ब्लैक एंड व्हाइट एरा में।
हाँ जी,
बहुत सी ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं जिनमें आपने संगीत दिया।
बिल्कुल।
तो ब्लैक एंड व्हाइट एरा से अभी तक बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत
हाँ टेक्निकल सब बातें बदल चुका है, सब चला गया है।
तो ब्लैक एंड व्हाइट एरा के बारे में कुछ बताइए।
देखिए, जब हम लोग आए उससे पहले महारथी लोग थे सब, शंकर जय किशन, नौशाद जी, एस टी बर्मन, श्री रामचंद्र जी, जो कि जिनको देखने के लिए लोग तरसे ऐसे लोग समझे, और गुणी लोग सब। और उस वक्त हम लोगों को काम मिलना, काम तो शायद मिल जाए लेकिन उनके सामने टिकना ये भी बहुत बड़ी बात थी, समझे ना। लेकिन हम लोग ऐसे जो निकले थे सहज भाव से कि भाई हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, चलो दुकानें तो हैं उधर बैठ जाएंगे। तो उसमें एक आराम से जो काम होता था उसमें एक झिझक नहीं थी, जो मन में आया वो काम करते रहे हम लोग। सुभाष देसाई जो थे, जो मनमोहन देसाई के बड़े भाई थे, उनको कल्याण जी भाई कुछ नरपंचमी में काम किया था उन्होंने, तो उससे वो पसंद आ गया था, तो वो बोले कि तुम्हें पिक्चर करना है। उसमें हमने काम शुरू किया। शुरू में हमको भी नहीं मालूम कि म्यूज़िक में क्या देना है क्या नहीं है। मैं थोड़ी ज़बानी बोलते रहा, हर वक्त कुछ करता रहा, तो वो अपना लगा हुआ था। हिंदीवर जी भी थे उन दिनों, हिंदीवर जी हमारे टाई पहनते थे, कंठ लंगोट जिसको कहते थे वो, तो वो पहन के वो आया करते थे। तो उसमें गाने बने, बनते 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 गाने ये जो बने, जिसका क्या होगा अंत मालूम नहीं है। और रिकॉर्डिंग जो होती थी उन दिनों में ऑप्टिकल पे जो होती थी, एक 6 घंटे में हम दो गाने करते थे उन दिनों में। एक ऑर्केस्ट्रेशन भी छोटा होता था, एक स्टूडियो था फिल्म अपना फेमस, वहीं रिकॉर्डिंग होती थी, और सवेरे 7 बजे से शुरू हो जाती थी। एक एडवांटेज उन दिनों में ये था कि लता जी जैसी भी सिंगर भी हों बड़ी, वो पहले रिहर्सल के आती थी, साथ में प्रोड्यूसर सुनता था, सब सुनते थे, उसके बाद बोलते थे कि ये काट दो, एडिटिंग होगी, पहले रिहर्सल में हो जाती थी। तो उससे जो भी काम करें उस वक्त वेरी क्लियर कि भाई यही काम इतना रखना है, ज़्यादा जगलरी नहीं थी। तो उसके बाद धीरे 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 आप जैसे कहेंगे कि भाई ऑर्केस्ट्रेशन का दौर आया, टेम्पो गानों के बदलने लगे, सब कुछ होने लगा। उसके बाद देखिए तो ये, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, मेरे देश की धरती, उससे पहले ज़्यादा इफेक्ट म्यूज़िक नहीं हुआ करता था। तो मनोज जी ने कहा कि भैया मुझे एक गाना ऐसा चाहिए कि सवेरे से शाम तक के सारे इफेक्ट इसमें आ जाएँ, और वो सुनाई भी दें, पिक्चर में तो लूँगा लेकिन साथ में दिखने भी चाहिए। और वो बोले कि सेठ जी तुम लोग तो बम्बई के रहने वाले हो, मैं गाँव का आदमी हूँ, तो मुझे सब कुछ चाहिए। तो एक मजाक में हमने भी कहा कि हमें रहें, लेकिन जो करके देंगे वो करके लाएंगे क्या आप। तो सवेरे से हम लोग ने सवेरे काम किया था, 9 बजे स्टार्ट किया था, रात को 4 बजे तक ये गाना बना, मेरे देश की धरती, जिसमें आपने देखा वो चहल पहल, ये सवेरे के आहट, ये पानी बैल बैलगाड़ियाँ सब करके। और वो भाई जब मनोज जी काम करके लेके आया, उन्होंने दिखाया था, हमने बोला हैट्स ऑफ टू यू, कि भाई जो भी दिखाया वो पूरा कैप्चर करके बुलाए थे। तो इस तरह से एक दूसरे की जो टसल होती थी, हेल्दी कॉम्पिटिशन, एक दूसरे को चैलेंज करते थे काम में, तो उसका एक फायदा अलग होता था।
मेरे देश की धरती सोना यहाँ उगले उगले हैं हीरे मोती ही, मेरे देश की धरती,
उन दोनों एक था कि एक गाने को 10 दिन भी लगते थे, कभी 15 दिन भी लगते थे। अब एक गाने का किस्सा सुनाऊं आपको मैं। सुहागरात में एक गाना था जिसमें लड़की को अपने पति के लिए वरदान देना है कि तुम सुखी रहो, तुम जो जियो जियो, ये सब चल रहा था। कुछ 15-20 दिन तक ये चला कि भाई इंदिवर जी कोई ऐसी बात लाई है कि जो जिसमें तारीफ भी हो, अमर भी हो, लेकिन कॉमन वर्ड नहीं चाहिए कि तुम अमर रहो, कि तुम जियो हजारों साल के, ऐसा नहीं चाहिए। बहुत कुछ लाते लाते उसमें हमने एक कंडीशन डाली थी कि फीमेल टच भी हो, फोकस भी टच हो, रिलीजियस भी टच हो। तो करते 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 वो लाए जब, तो कहला जी मैंने उनको 101 रुपये दे दिए। क्या मुखड़ा लाए थे वो, कि गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे।
अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का वो सजीला प्रोग्राम जिसका नाम है सेल्यूलॉइड के सितारे। और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फिल्म संगीत की दुनिया के सितारे, संगीतकार आनंद जी। आपसे बातचीत कर रहे हैं गणेश शर्मा। आगे की बातचीत से पहले आइए एक बार फिर सुनते हैं इस प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी की शैली, उनके अंदाज और विविधता का परिचय देते गीतों के अंश।
तेरा ही नाम लिखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है।
सबके बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले,
जैसे
के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, कब के बिछड़े।
मेरी देश की धरती हाँ। गाने का जब जिक्र किया तो आपने इफेक्ट्स की बात की, एक और गीत है फिल्म सफर में नदिया चले चले रे धारा, मन्ना दा ने गाया था, उसमें भी पानी का इफेक्ट जो है हाँ। और पूरी वो जो नाव चलती है नदी में उसका इफेक्ट है, बहुत खूबसूरत गीत भी है उसके। उस गीत के बारे में कुछ आपको याद आता है?
बिल्कुल आता है, सारी बातें याद आएंगी, क्यों नहीं आएंगी क्योंकि उस वक्त तो पापड़ बेलने पड़ते थे ना, उन दिनों में कुछ और ट्रैक नहीं हुआ करते थे, जो हो गया रिकॉर्ड उसी वक्त वही है, उसमें बाद में मिक्सिंग नहीं हो सकती थी। तो उसमें पानी के दादा आशीदा को चाहिए था कि भाई नाव चल रही है उसका पानी का इफेक्ट भी चाहिए हमको, ये चाहिए, तो क्या करेंगे सोचा हमने। तो जो मूंग होते ना मूंग खाने के, उसको सूप में डाल के हम ऐसे हिलाते थे श, 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 ये करके उसको लय में वो बजाते थे। फिर पानी का हौज भी लाए थे जिसमें वो पानी की थोड़ा सा ये भी लगे तो स्टूडियो में पानी भी हो गया था।
चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना
उसमें एक और भी गाना था जो तुमको हो पसंद, जिसमें एडिटिंग में हम लोगों ने एक और तिकड़, दादा जरा एक्सपेरिमेंटल थे तो हॉर्न का था कि एक ट्रांजेक्शन, एक हॉर्न जगह बजता है, हॉर्न बजने से पंछी उड़ता है, पंछी उड़ के जाता है तो और लोकेशन में आ जाता है, तो उसमें वो सारी इस्तेमाल किए थे हमने। तो बैटरी ले गए थे वहाँ पे, कौन सी बैटरी, कार की, और हॉर्न लेके जब वो जगह आती थी वहाँ बजाते पी पी तो पंछी की आवाज़ निकालता तो वो निकल के जाती थी। तो अलग काम होता था, मज़ा आता था। अभी तो क्या सारे ट्रैक हो गए हैं, आपको इफेक्ट ट्रैक रेडी मिलते हैं, सब कुछ दूसरी ट्रैक में वो हो जाएगा, नथिंग टू वरी, एवरीथिंग विल बी डन।
तो लाइव रिकॉर्डिंग आप मिस भी करते हैं?
बिल्कुल मिस करते हैं, क्योंकि उसमें सेल्फ का एक जो है ना अब लिमिटेशन आ जाती है ना अभी तो, कि जहाँ पर आपने कर लिया उसमें और बंदे बंद गया। इसलिए मैंने बोला कि शुरू में जो एक आज़ाद पंछी जो है मुखड़ा, उसको पहले आज़ाद में रहने दीजिए, जो उसको भाव आता है उसके बाद उसको बांधिए, उसके बाद उसमें लय में लाइए, ये करिए।
आनंद जी भाई, कल्याण जी आनंद जी ने हर तरह के गीत बनाए हैं, शायद ही कोई ऐसा मूड या सिचुएशन हो जिसका गीत उनके संगीत द्वारा नहीं आया हो, लेकिन इस वक्त मैं कॉमेडी सॉन्ग्स पे कुछ आपसे जानना चाहूँगा, कुछ बहुत अच्छे कॉमेडी सॉन्ग्स आपके द्वारा बनाए गए हैं, तो कॉमेडी सॉन्ग जब आपके सामने आता है तब आप क्या करते हैं?
वो हम लोगों की नेचुरल फितरत भी है, कुछ कल्याण भाई जोक्स करते रहते हैं, घर में भी मजाकपन चलते रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो उससे एक वो बड़ा आसान लगता है काम करने में। फिर उसके लिए कॉन्सेप्ट भी लाने पड़ते हैं, जैसे गोवा में गाना था तो हमारे पास में एक लड़का रहता था, वो पी के पुलिस स्टेशन में उसको ले जाएँ, तो एक वक्त हर वक्त बोलता था, बोले कहाँ गया था तू? बोले ससुराल गया था। तो वो वर्ड का इस्तेमाल करना अच्छा लग रहा उनको, तो उनको पुलिस स्टेशन में ले जा रहे हैं, तो चले हैं ससुराल। फिर दो बेचारे बिना सहारे, बिन ताले की चाबी लेके फिरते मारे, तो भी एक अलग टाइप का गाना था। फिर एक गाना था बोलेगा तो बोलेगा के बोलता है, तो एक हमारे वहाँ एक था नेपाली, वो बेचारा हर वक्त जो सरवण था, तो वो बोलता था कि कुछ भी बात करो तो साहब हम बोलेगा तो फिर बोलेगा कि तुम बोलता है, और नहीं बोलेगा तो फिर तुम बोलेगा कि नहीं बोलता है। तो वो पन अच्छा लगा हमको कि बात बात में करता था कि हम बोलेगा कि तो बोलेगा कि बोलता है, तो इस तरह से निकलते आ गए।
आनंद जी भाई, ये जो गीत आपने अभी बोला हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, उस गीत से मुझे याद आ रहा है कि उसमें किशोरदा ने आवाज भी नेपाली की तरह ही निकाली।
हाँ बिल्कुल, उनकी ये खूबी ये थी कि वो पहले आके पूछेंगे, कैलाश भाई को महाराज बोलते थे वो, महाराज ये गाना किस पे है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो पिक्चर में वो डायरेक्टर के बेस असिस्टेंट को बुला लेंगे, यार भी बताओ तो मुझे ये जो तुम्हारा हीरो है ना उसके डायलॉग क्या है, वो बोलने का स्टाइल क्या है, बड़ा चुलबुला दिखाया गया, तो वो देख लेते थे सारी बातें और उसके बाद उस गाने को उस मूड में गाते थे वो। तो जैसे अभी नेपाली उसमें कैरेक्टर था प्राण जी का, तो उन्होंने शुरू कर दिया, पूरे दिन वो हंसाते रहते थे ना, वो कभी भी किशोरदा आएंगे तो सामने फीमेल सिंगर या दूसरा सिंगर होगा उसको नर्वस ये कुछ जोक मार के ही करेंगे, तो वो हंसते हंसते उनकी आवाज़ बैठ जाएगी दूसरे वाले की। वो दिन तो ही चला था, महाराज किधर जाता है तो हम जाता है, ये चलता है, करते 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 उन्होंने पूरा गाना एंड तक उस माल बना के कर दिया था।
हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, एक मेम साहब है साथ में साहब भी है, एक मेम साहब है साथ में साहब भी है, मेम साहब सुंदर सुंदर है, साहब भी खूबसूरत है, दोनों पास पास है, बात खास खास है, दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले हम कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हमरा एक पड़ोसी है, जोशी है वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है, ये जब दो जवान दिल मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा, ये जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा, दोषे चार हो सकते हैं हैं, चार से आठ हो सकते हैं, आठ से साठ हो सकते हैं, जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले हम तो खुश नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है।
आनंद जी, सिचुएशंस की बात है, आपके करियर में ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आया और बहुत चैलेंज था जो आपके लिए कि ये गीत बनाना है आपको, एक चैलेंजिंग सॉन्ग कोई था?
हम उसको बोलते हैं बैटरी चार्जर। चैलेंजिंग गाने कौन से होते हैं जिस पिक्चर में रोमांस ही नहीं है, जैसे कि डॉन, कोई रोमांस ही नहीं है उस पिक्चर में, ठीक है, विक्टोरिया 2-0 कोई रोमांस ही नहीं है,
जंजीर
है उसमें कोई रोमांस नहीं है, तो ऐसी पिक्चरें जब आती हैं तो उस वक्त लगता है कि हाँ अब भाई जागो, अब इसमें तुम क्या करके दिखाते हो, पिच तो अच्छी नहीं है, हाँ अब उसमें कैसे खेल के दिखाते हो, क्या स्कोर करके दिखाते हो, लेकिन उसमें आपको वो कॉमेडी वे, थोड़ा सटायर, थोड़ा और नॉलेज, ये सब साथ में मिलके काम करते हैं जब, और आदमी अलर्ट होता है थोड़ा सा उसमें कर जाता, और ईश्वर की दया है कि भाई हर वक्त जो भी उसमें आप सक्सेसफुल हुए, पिक्चरें भी सक्सेसफुल हुई,
जंजीर फिल्म में मन्ना दास से आपने यारी है ईमान मेरा गाया था, उसमें रवाब का इस्तेमाल था और उसमें वो काबुल अफगान की एक जो छलक थी उसमें, तो कुछ हिस्टोरिकल कनेक्शन भी आप
देखिए। अभी हम लोग हैं तो गुजरात से, लोग तो ये समझते हैं कि गुजराती लोग उर्दू जबान नहीं जानते, उनको और लैंग्वेजों की मालूम नहीं है, जो नहीं वहाँ गए उनको तो मालूम ही नहीं है कि वहाँ पर क्या क्या शब्दों के इस्तेमाल होते हैं क्या नहीं। अफगान से जुड़ा हुआ कच्छ, कच्छ से जुड़ा हुआ सौराष्ट्र, तो ये सब नज़दीक के लोग हैं। रीजनल क्लाइमेटिकल कंडीशंस और ये सब हैं, हिंदू मुस्लिमों को साथ में रहना वहाँ पे भी, कच्छ में भी हैं वो कच्छी बोलते हैं सभी, वो कौन हिंदू है कौन मुसलमान पता नहीं। कराची में जो लोग रहते हैं आधे हिंदू हैं आधे मुसलमान हैं, जो अभी तक एक ही ज़बान चलती है, तो वो ढांचा तो बचपन में से देखा गया है ना। तो अफगानी रंग जो है, पठानी रंग जो है, वो तो बैठा हुआ है कि भाई इसमें रबाब होगा, इसमें ये होगा, उनके जो ऑब्जर्वेशन करते हैं कि भाई रुमाल से खेलना कैसे, तो इस तरह से वो गाना हुआ था। लेकिन गाना ओपन गाना था, बड़े बड़े ढोल बज रहे धीन ता धीन ता धीन ता धीन ता, तो मन्ना बाबू आए और वो गाने लगे लाउड, तो हमने बोला नहीं इसमें वो बात नहीं बनेगी, सॉफ्ट गाइए इसको। तो बोले नहीं आनंद जी ऐसे इतने गाने में तुम क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े जोर से गाने बज रहे ढोल बज रहे उसमें ये होगा। बोले बाबू, मन्ना बाबू एक बात समझिए कि आपने एक गाना गाया था काबुल वाले में, ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन, तो बोला अगर उस टोन में अगर ये गाना होगा ना तो इस मोर इमोशनल हो जाएगा, ये सिर्फ नाच गाने का गाना नहीं है, इसमें डिवोशनल टच भी है। तो बोले चलो मैं थोड़ा करके सुनाता हूँ, देखता हूँ उसके बाद क्या होगा। तो अंदर जाके उन्होंने सुना, बोले नहीं ठीक है, लेकिन उस तरह से दबके आवाज़ सुर में रखना और गाना, ये मंजे हुए लोगों का ही काम है।
यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। साध दिल छेड़ो जहां में, छेड़ो जहां में प्यार की गूंजे सदा, साध दिल छेड़ो जहां में प्यार की गूंजे सदा, जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारे हूँ खुदा, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके सादगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी।
आनंद जी भाई, क्या आप मानते हैं कि संगीत जो है,
हाँ जी,
वो संगीत और शिक्षा,
हाँ,
दोनों साथ चल सकते हैं?
कई बार बच्चे फैमिली वाले ये समझते हैं कि इससे एजुकेशन में डिस्टर्ब हो जाएगा या म्यूजिक जुड़ जाएगा बच्चा तो उसमें से निकल जाएगा, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। तो अगर आपके बच्चे में भी, सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके बच्चों में कहीं म्यूजिक का कुछ हो तो उसको पढ़ाई की वजह से उनको छोड़ नहीं देना, नहीं तो मैं ये कह सकता हूँ गणेश जी के जितनी दुनिया की फिलोसॉफी है, मेरा तो ये कहना है, मैं सबको ये कहता हूँ कि दुनिया की सारी फिलोसॉफी देने वाले जितने लोग थे सब ग्वाला थे, कृष्ण ग्वाला थे, मोहम्मद ऊँट चराते थे, ठीक है, फिर जीसस क्या चलाते थे, घेटे बकरे चराते थे, गुरु नानक बकरियाँ चराते थे, दुनिया की सबसे बड़ी फिलोसॉफी देने वाले लोग जानवरों में रहे और उन्होंने फिलोसॉफी दी, कोई कॉलेज में नहीं गए थे, कोई कहाँ नहीं गए थे, तो ये क्या रीज़न था कि वो फिलोसॉफी दे सके? क्योंकि जिस तरह से हम बात करके अपने आपके आइडियाज़ इम्पोज करते हैं, उन्होंने मनन किया और मनन ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप भावुकों के अंदर से सोचेंगे तो अंदर से कुंडली जागृत होगी और सच्चे भाव निकलेंगे, तो इन्होंने सारा दिन उन जानवरों में साथ रह के सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, किस वजह से मैं पैदा किया गया हूँ, ये कुदरत किसने बनाई, क्या किया है। जब उससे अनुभूति होती है तो और उसमें से आत्मा जब जागृत होती है, जैसे संतों की जागृत हुई थी, तो वो जब निकलता है वो कुछ अलग ही निकलता है, उसमें कोई किताबें में वो चीज़ें लिखी हुई नहीं होती।
आनंद जी भाई, आत्मा की अनुभूति की बात हो रही है तो क्यों ना एक भजन आप अपने पसंद का सुनवाइए। रामचंद्र कह गए सिया से,
हाँ जी,
आप ही की धुन है।
हाँ, उसे वही भी भजन है, कीर्तनकार जैसे होते हैं ना, इस तरह से कथाकार होते हैं, तो भजन का एक वो रूप भी है कि जिसमें सीख दी जाती है नवयुग के जमाने के लिए, कही है इसमें, तो उसमें कवि कंक के पुरानी जो बातें थी उनको हम मध्य रखा था कि भाई जमाना, आने वाला जमाना कैसा होगा, क्या होगा, तो उसको उस कलर से दिया था। सौराष्ट्र में ये रंग ज़्यादा पॉपुलर होता है, सौराष्ट्र गुजरात में कृष्ण जी को भी वहाँ आना पड़ा। ज्योग्राफिकल रीज़न देखेंगे हम तो पंजाब से लेते हुए अटैक होते 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 आते 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 धर्म का जितना भी संचार है वो वहाँ रह गया, तो कृष्ण भी वहाँ आए, नाना फडणवीस भी वहाँ आए, तो वहाँ पे कल्चर, सोमनाथ जैसा मंदिर हो, इतनी ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग वहाँ पे बड़ा हो, कृष्ण वहाँ आए, वहाँ से डांडिया लेके आए, फोक हुआ, इतने सारे भजन हुए, नरसिंह मेहता वहाँ हुआ है, और गांधी भी पैदा तो वहीं हुए, अहिंसा का परम धर्मों की बात वही हुई जो उसने एक रिवोल्यूशनरी इतनी बड़ी बात कर दी, दुनिया को सिखा दिया कि अहिंसा से भी जीता जा सकता है। तो उस भूमि में कोई असर तो होगी, उस भूमि का जिसने पानी पिया है उसमें कुछ तो आने वाला ही है। तो हमारे गानों में आप देखेंगे धीरे 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 जाते जाते हम लोग फिलोसॉफी में घुस जाते हैं।
चुगेगा धाना धुन का, कौवा मोती खाएगा। हे जीरे सिया ने पूछा, भगवन कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा, तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी, बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को, बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह के सिया से, दिन खेचातानी खेचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी मनमानी।
आनंद जी भाई, लिटिल वॉन्डर्स जो बच्चों का एक ग्रुप, जिससे कल्याण जी आनंद जी कई सारे बच्चों को एंकरेज भी कर रहे हैं, उनके टैलेंट को निखार रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के बहुत से चैरिटी शोज भी कल्याण जी आनंद जी करते आए हैं। ऐसा क्यों है कि कल्याण जी आनंद जी ही सबसे ज्यादा चैरिटी शोज कर रहे हैं?
पिताजी को जब हमने बोला कि हमको इस लाइन में जाना है, तो दुकान होने के बाद भी उन्होंने कहा कि बेटा हम काम के लिए रोटी कमाने के लिए ये काम हमने किया अनाज का, तुमको और कुछ करना है तो करो, इतनी छूट उन्होंने दी। ये बड़ा एहसानमंद रहे हम, वरना ये भी बोल सकते कि चुपचाप बैठ जाओ दुकान चलाओ। तो उसके बाद एक बुजुर्ग मुझे कहने लगे कि आनंद जी तुमने ये जो धंधा ढूंढा है ये अजब ढूंढा है, कल मैं सोच रहा था हर धंधे में पैसा लगता है, तुम तो बिना पैसे का धंधा ढूंढ के लाए हो, तो इसके लिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या है? बोला वो ऊपर वाले की मेहरबानी और नॉलेज और आपके आशीर्वाद, ये जो बोलना था मैं बोला। बोले हाँ बेटा वो तो ठीक है, लेकिन जो दुनिया से लिया उसको रिपे तो करना पड़ेगा। तो बोले तुम एक काम करो, अभी जो भी काम करना शुरू करते हो तो उसमें से चैरिटी के लिए क्या करोगे? बोले ये चैरिटी से तुम दूसरों के जो उपकार लिए वो बदला करोगे, और आने वाले आपके जो बच्चे हैं जो लिखा जाता है श्री सवा लाभ लक्ष्मी शुभ लक्ष्मी लाभ लक्ष्मी, तो उसका मकसद ये है कि आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारे सुखी रहे, सारे संस्कार मिले उनको। तो हम लोगों ने, पिताजी ने कहा, हमको उसको बात माननी थी, और अच्छा भी लग रहा है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं उसे एक तीन घंटे हमारे जाते हैं और उसमें किसी का भला होता है, कहीं अंधों के लिए काम हो गया, कहीं ब्लाइंड के कभी हो गया, कभी कॉलेजों के लिए हो गया, कभी पुलिस के लिए हो गया, कभी कुछ हो गया, तो खुशी तो इस बात की होती है।
आनंद जी भाई, इतने लंबे करियर में इतने लोगों से मिलने के बाद, इतने बाहर विदेश इतने घूमने के बाद, और बहुत लंबा तजुर्बा अपने साथ रहने के बाद, एक लाइफ की कोई फिलॉसफी होगी, कुछ निचोड़ होगा जिस पर आप हमेशा अमल करते हैं और आप मानते हैं कि जिंदगी ये है, तो आपके लिए जिंदगी क्या है, आज क्या है, पहले क्या थी?
मैं फिर पिताजी की बात करूँगा, मेरे पिताजी बड़े हावी हैं, उनके उपकार से मैं कभी ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जीवन के भवसागर को पार करने के लिए जैसे तैरते वक्त ऊपर से पानी को खींचते हो, इस तरह से मोह माया को खींचो और अंदर से लात मारा करो। ऊपर से सब समझो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं मेरा नाम, लेकिन अंदर से एक समझ लो कि तुम कुछ नहीं, एक मुसाफिर हो, आए हो, चले जाना है, और ये तुम्हारा कुछ नहीं है। तो ये हर वक्त रहा, जिससे काफ़ी मज़ा भी आता जीवन में, कभी अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में हर किसी के आते हैं, लेकिन उससे उसमें अटक नहीं जाता आदमी। बहुत कुछ आदमी सोचता है ना, सा हर कुछ काम तो कर नहीं पाता, जैसे मैंने अभी कहा उसका ही कॉन्ट्राडिक्टिंग है, लेकिन उसमें आगे चल के एक बात आती है, जैसे मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, कि भाई पाया लेकिन छुआ है, मिला नहीं है, प्राप्त कुछ नहीं हुआ है, हर चीज़ को हम छू के निकल जा रहे हैं।
मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया,
विविध भारती के श्रोताओं को ये मौका मिला कि वो आप जैसी शख्सियत को सुन पाए और बहुत सी जानकारियाँ ले पाए, बहुत अच्छे अच्छे गीत सुन पाए, ये हमारा सौभाग्य है, श्रोताओं का भी सौभाग्य है।
वेरी मूव्ड विद दिस कि जिस तरह से हम बातचीत कर सकते हैं, और आज के दौर में ये काम लोगों तक जाए, गाँव में जाएगा, सब लोग सुनेंगे, और ये इन लोगों की मेहरबानी है कि इन्होंने हमको अपनाया।
तो आनंद जी भाई, उन्हीं श्रोताओं की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से आप यहाँ आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप भविष्य में भी बहुत से गीत और इस तरह की ज्ञान की बातें साथ में,
हाँ मुझे, मगर ये कहूँगा कि इसके लेटर्स कभी आए तो मुझे ज़रूर सुनाइए, इस तरह के लोगों को आज के दौर में पसंद आती हैं कि नहीं बातें,
मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
उड़ते पंछी का ठिकाना, हो उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां, ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहां, बन के सपना
दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी। इनसे बातचीत कर रहे थे गणेश शर्मा। आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी थे विनय तड़वलकर और इस प्रोग्राम को विविध भारती की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।
गाए जा और मुस्कुराए जा जब तक के फुर्सत दे ये समाना। गाए जा और मुस्कुराए